الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے 61 آیت سے لے کر 79 تک یہ پانچواں رکوع ہے سورہ الحجر کا، اس کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے، اور انشاءاللہ تعالی آج یہ مستر چھوٹا رکوع ہے، اور اسی رکوع کے اندر انشاءاللہ تعالی اسی رکوع کا آج ہم الفاظ کا اور اس کا معانی اور اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. تھوڑا سا جو ہے پیچھے سے یاد کر لیں جو سورہ ہجر کا پورا مضمون ہے. سورہ ہجر جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے، اور مکہ کے بھی آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے. تو اس میں جو خاص طور پر جو خطاب ہے وہ اہل مکہ کو ہے، اور اس میں پھر کچھ سورت کے شروع کے اندر کائنات سے افاقی دلائل ہیں، پھر انفسی دلائل ہیں، اور اس کے بعد پھر تاریخی دلائل ہیں جزا و سزا کے، جن کی بنیاد پہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے. اور آج جو ہم اس میں جو ہے جو تاریخی دلائل ہیں اس کے اندر قصہ آدم و ابلیس بھی ہے جو ہم نے ابھی پچھلے اسباق میں ختم کیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ تاریخی دلائل جو ہے وہ جو گزشتہ اقوام ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے ان کے حوالے سے. آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے تھوڑی سی کچھ آیات جو ہے پڑھی تھی پچھلے سبق میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور جو ہے وہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، ایک ہی جو ہے وہ مہم درپیش تھی جو فرشتے جو جس پہ آئے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کے اوپر آئے جو عذاب لے کر آئے. تو یہ حصہ جو آج کا ہے جو ہم ابھی ہم نے تلاوت جو ہے سنی، یہ ان آیات پہ مشتمل ہے جس میں قوم لوط پہ اللہ تعالیٰ کا قوم عذاب نازل ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تذکرہ ہے قوم شعیب کا، اور پھر ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان کے بارے میں جو ہے ان کے کھنڈرات تمہارے ابھی راستوں کے اوپر ہیں جہاں پہ تم سفر کرتے ہو، ان سے جو ہے عبرت پکڑو اگر دید عبرت تمہارے اندر موجود ہے. تو یہ جو پانچواں رکوع ہے جو ہے یہ آخری ہم نے 79 آیات تک جایا، شاید جیسی 80 آیات تک جو ہے 79 آیات تک ہے ہم نے تلاوت کی ہے. تو موسٹلی یہ قوم لوط، اصحاب الایکہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اصحاب الحجر کا صرف جو ہے تذکرہ ہے، اصحاب الحجر کا آگے پھر جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آنے والے جو 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 انبیاء علیہ السلام اور رسول تھے ان کو جھٹلایا. قوم لوط کی جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا جو جرم تھا جو ہم جنس پرستی کا، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حضرت دلو السلام نے جو ان کو دعوت ایمان اور اصلاح کی کوشش جو کی اس قوم کے اندر، تو اس کو جھٹلایا، اور پھر ان کے اوپر فرشتے نازل ہوئے ہیں، اور فرشتوں نے کس طریقے سے اس قوم کو جو ہے ملیہ میٹ کر دیا. تو یہ قوم کی تباہی کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، اور پھر اسی کے اندر یہ بھی پیغام ہے کہ ان تباہ شدہ معذب اقوام جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان کے برباد مساکن اور کھنڈرات تمہارے بالکل تب و جواہر کے اندر موجود ہیں، ان سے دست عبرت حاصل کرو. یہ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ ہے جو پانچواں رکوع ہے جو ابھی ہم نے چند آیات اس کی جو تلاوت کی اس کی. آئیے ہم اپنے سبق میں الفاظ اور ان کے معنی پہ غور کرتے ہیں. فلما، فا الگ ایک لفظ ہے جو حرف ہے بلکہ جو ہے پس کے معنوں کے اندر جو ہے دین پس، جو یہ اردو میں معروف ہے، یعنی اگر کوئی بات کی جا رہی ہو تو پس اس کے بعد لگایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا، اور پھر پس اس کا نتیجہ یہ ہوا. تو یہ جو ہے وہ پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. تو فرشتے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کے گھر پہنچے. فلما، پس لما جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ جب کے معنوں کے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بتاتا ہوں آپ کو. فلما پس جب، جا آئے، लूत, आले लूत के पास, आले लूत जो है पूरी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, आले लूत के पास जब आए, एक तो लम्मा के मनी माल जबकि होते हैं वेन एवर, ठीक है वेन, और दूसरा जो है ये माजी में किसी जो कोई माजी के अंदर कोई अगर वाकया हो उसकी नफी करनी हो तो भी लम्मा जो है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं के मानों के अंदर ये दो मानी में जो है लम्मा कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है। तो इजी टू रिमेम्बर, जब या फिर अभी नहीं के मानों के अंदर, और ये कॉन्टेक्स्ट बता देता है सयाक के जो है किस मानों के अंदर है, जा आने के मानों के अंदर आता है, लम्मा जा जा भाई उनके पास अल मुरसलून, मुरसलून मतलब भेजे गए, जो भेजे गए यानी इससे मुराद है फरिश्ते, और वो भेजे गए इसलिए कहा गया कि उनको अल्लाह ताला ने भेजा। आला तो कहा, एक शख्स ने कहा, जाहिर जो है एक शख्स उनमें जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम ही थे, तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नकुम, इन्न बेशक तुम, बेशक तुम लोग, यकीनन तुम लोग हो कौमुन, कौमुन जो है कौम का लफ्ज जो है कौम के ऊपर इतलाक होता है, लोगों के ऊपर होता है, गिरोह के ऊपर होता है, तो तुम लोग हो मुनकरून, मुनकर जो पहचाने नहीं जा रहे हो, यानी अजनबी लोग हो तुम, अनकरा जुन जुन के रो इनकारन किसी चीज को ना पहचानना, ये जो है होता है, और इसी से लफ्ज मुनकर जो है अजनबी, वो जो अजनबी लफ्ज जो पहचाना ना गया हो, जो पहचान में ना हो, तो मुनकर। कालू तो उन्होंने कहा, फरिश्तों ने नहीं कहा, बल बल्कि जे ना का जे ना जे, ये तीन लफ्ज हैं जा ना और का, जा जा जे लफ्ज है, बल्कि जे लाए हैं ना हम का आपके पास, बल्कि हम लाए हैं आपके पास बेमा साथ उसके, या वो चीज कानू थे फी है उसमें यम तरू, ये वही है नीम रा, ये जो है जो लफ्ज होता है रैप जिससे जो जो निकला है शाकिन अमतरा, इसे नीम रा या इसका जो बाब इफ्तिआल होता है सेवंथ फॉर्म ऑफ एट्थ फॉर्म ऑफ द जो वर्ब होती है इमतरा यम तरी इमतरा शक करना, जिसमें ये लोग शक करते हैं, और उर्दू में इसे रैब और ला रैब दोनों जो है लफ्ज, शक करना ला रैब कोई शक नहीं, ये अब उर्दू में इस्तेमाल होने लगे हैं और उर्दू में ये मारूफ हो गए ये लफ्ज, जिसपे ये शक कर, यानी हम तुम्हारे पास वो चीज लेके आए हैं जिसमें ये शक करते थे, वो आतई ना का वो आता, ये जो है लफ्ज आता वो जिसमें कह रहा हूँ ये जा और आता, ये तकरीबन हर सफ़े पे पर कुरान मजीद में आपको मिल जाते हैं, तो आता आता का मानी तो होता है आना, लेकिन अगर ये बा के साथ आ जाए जैसे आप ये देख रहे हैं आतैना का बिल हक के, बा जब बे के साथ आए तो फिर आता के मानी होते हैं जो है ले आना, ठीक है ले आना, आना और ले आना, ये फर्क होता है, अगर किसी सिले के साथ यानी बा के सिले के साथ आ जाए फिर इसके मानी ले आना, ये लाने के मानी होते हैं, वह आते ना का और हम आए हैं ले आए हैं का आपके पास बिल हक, हक के साथ हम आए हैं आपके पास हक के साथ, वह इन्ना, अच्छा हक से मुराद जो है वो बिल्कुल सच है हक का फैसला है, ये जो अजाब लेके आए हैं वो भी हक के, जो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला है तो वो भी मुराद हो सकता है हक के, वह इन्ना और बेशक हम लसादिकून, लाम जबर ला जो है ये हरफे ताकीद ताकीद के लिए लम्ज़ बल्ला, इसको लाम को लामे जबर लामे फतह लामे मफ्तू लामे ताकीद, ये सारे नाम इसके लिए ना, इम्फेटिक लाम आप कह सकते हैं इंग्लिश में जो है, ये सारे नाम होते हैं, तो जहां जहां पे देखें कि ये जो एम्फेसिस है ताकीद है इसकी अरबी के अंदर बड़ी उसलूब है, कहा जाता है कि वो 36 के करीब उसलूब है जिसमें आप जो है ताकीद को बयान कर सकते हैं, 36 तरीकों से आप किसी उसलूब ताकीद के उसलूब को बयान कर सकते हैं, उसमें एक मारूफ जो है वो ये है कि आप पहले जो है वो वर्ब से पहले जो है या नाउन से पहले आप लम्ज़ बल्ला जो है ले आए, तो तो फिर ये लामे मफ्तू, ये लामे फटे लाम होता है, ये भी एक तरह की उसूल है। और यकीनन हम सच्चे हैं, हम फासरे फासर। अच्छा देखें, ये लफ्ज जो है इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे लफ्ज को। लफ्ज सारे के सारे अक्सरियत अल्फाज की कुरान में उर्दू में इस्तेमाल होती है, तो फिर आसान हो जाएगा। फाजब फाजब और फा बस पस, लिहाजा के मानों के अंदर आप इस्तेमाल करें लिहाजा या पस। असरे बे अहले का आगे असरे, असर का मतलब ये ऐसा लफ्ज है, आप यकीन आप में से हर एक तमाम जानते होंगे इसके मानी, लेकिन ये है कि हम जो ना अगर आप रिलेट करें दूसरी जगह से, तो इसका मतलब होता है रात के वक्त ले चलना या रात के वक्त ले जाना। तो फस फसरे तो पस रात के वक्त ले चले, बागर भी साथ अहले का। अहले जो है अहल घर वाले, घर वाले, और का आप अपने घर वालों को रात को ले चले, ये है। तो कहाँ पे आप कैसे कैसे मालूम हो कि आप इसके मायने जानते। अब देखिए मारूफ जो है कुरान की जो आयत है, सुबहान अल्लजी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। सुबहान अल्लजी असरा, पाक है वो जात जो ले गई बि अब्दिही अपने बंदे को, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। तो इसका मतलब हम असरा रात के सफर को कहते हैं, रात को ले जाना। तो ये वही वाला असर है, असरा युसरी इसरा रात को ले जाना, बाबे अफाल है। तो ले चल पड़ो, यही हज़रत को कहा कि तुम रात के वक्त जो है अपने घर वालों को ले चलो। बेकित बेकित इन बाजर भी मतलब साथ, कित इन जो है किता टुकड़ा क्यों कहते हैं आपको पता है, कोई ऐसे ऐसे उर्दू में लफ्ज जो है कता निकला हुआ है, टुकड़ा जो है एक हिस्सा आप कह सकते हैं, हिस्सा या टुकड़ा जो, तो रात का टुकड़ा इसमें मुराद है रात का हिस्सा, मीन लैल लैल का रात का, रात का एक टुकड़ा या रात के एक हिस्से में से आप ले चलो घर वालों को। वत्तबे और इत्तेबा कीजिए, पैरवी कीजिए, अदबारहुम, यानी ये देखें ये किसको कहा जा रहा है, ये सारे सेकंड पर्सन जो जो सिंगुलर है उसके मुखातिब है, जो और वो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। तो लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के फासिर फासरे बियाहले का, आप अपने घर वालों को ले चलिए और रात के समय, वत्तबे और इत्तबा कीजिए, अदबारहुम उनके पीछों का, उनके पीछे, उनके अदबार में ना ये दुबर की जमा है, दुबर के मतलब होता है पीठ पीछे पुश, ये सारे मानी जो है ना उसके होते हैं। दुबरुस सलाह भी इसी से लेकर हुआ, दुबरुस सलाह का मतलब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जो है वो दुआएं जो सिखाई हैं, जिन्हें हम आमतौर पर नमाज के बाद जो है पढ़ते हैं, इन्हीं तो उनको कहा गया है ये दुबरुस सलाह। तो बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि नमाज के आखिरी हिस्से में भी सलाम से पहले भी पढ़ी जा सकती हैं या सलाम के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, वो सारी दुआएं जो है दुबर सलाह की है, नमाज के पीछे की है, नमाज के बाद की है। तो वत्तबे अदवार और चलो खुद उनके पीछे, यानी लोगों को पूरी फैमिली को खानदान को ईमान वालों को आगे चलाओ और तुम चलो उनके पीछे, यानी पीछे पीछे चलो उनके। वला यल तफे, अब देखिए ये सारे अल्फाज बजाय मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन उर्दू में सारे अल्फाज, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो उर्दू में इस्तेमाल ना होता हो। वला और ना जल्तफित, आप इल्तफात कीजिए। अच्छा उर्दू में इल्तफात का लफ्ज आम है, अब जो है मेहरबानी के अंदर लुत्फ व करम में किसी की तरफ मुतवज्जे होना, किसी की तरफ जो इल्तफात नजर इल्तफात डालना, आप कहते हैं नजर इल्तफात, तो किसी की तरफ मुतवज्जे होना, उसका रुख करना, तो रुख मोड़ने को असल में कहते हैं। तो वला जल्तफित और आप रुख ना मोड़, कोई भी रुख ना मोड़े और रुख ना मोड़ो, यानी रुख ना मोड़ो मतलब आप यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर 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 टाउन, आप अपनी बस्ती से आप लोगों को निकल के ले लेके जा रहे हैं, उनको आगे चलें आप उनके पीछे चलें। तो कहा रहा है कि रुख ना मोड़ो मतलब है कि बस्ती की तरफ रुख ना करो, बस्ती की तरफ मुड़ कर ना देखो। अच्छा ये आप तर्जमा तो तमाम तर्जमों में ये लिखा होगा कि मुड़ कर ना देखो, ठीक है, तो लेकिन असल में इल्तफात को मानी याद रख लें, इल्तफात का मतलब होता है लुत्फ करम में मोहब्बत में किसी किसी की तरफ इल्तफात करना, उसकी तरफ रुख मोड़ना, उसकी तरफ मुतवज्जे होना। तो ये जो है इल्तफता जल्तफे तो इल्तफातन, ये उर्दू का लफ्ज, ये जो ये आठवीं फा में जो वर्ब की इल्तफात, ये उर्दू में एज इट इज इस्तेमाल होता है। इल्तफात जो है ये रुख मोड़ना, मुतवज्जे होना, मुल्तफित भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इल्तफात भी इस्तेमाल होता है, शफकत से मुतवज्जे होना। मिनकुम, तुम में से अहदुन, कोई एक भी, यानी कोई एक भी तुम में से मुड़कर न देखे। और ये इसलिए नहीं है कि ये कोई जिसने पीछे मुड़ के देखा वो पत्थर का हो जाएगा, जैसे हमारी कहानियों में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि तुमने इनसे रिश्ता काट लिया है और इन पे अल्लाह ताला का अजाब आया चाहता है, और ये अजाब को जो है वो मत तुम जो है उसकी तरफ देखो भी मत, कि मुड़ के वापस वापसी की तरफ। ये तुम्हारे दिलों में कोई ऐसी ना हो कि हमारे रिश्तेदार और हमारे घर बार और हमारे सारे जो चीजें, हमारे जो है हम अपने जितने रिश्ते हैं सारे, वो सारे के सारे वहीं पे रह गए हैं, तो उनमें से बिल्कुल कतई कता तल्लुक करके जो है वो निकलो बिल्कुल, कि कोई शख्स जो है उनमें से मुड़ कर बिना देखे उसकी तरफ कोई कोई रिश्ता मत रखो। वामदू, अब देखिए ये भी इसी अल्फाज में से है, कि ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस वजह देखिए मीम दौद वाओ, मीम दौद जा है इसका मादा, मादी मादी जो तुम लोग गुजर चलो, ये मदा जमदी मदीयन चले जाना, गुजर जाना, इसी से लफ्ज उर्दू का लफ्ज माजी, गुजर जो गुजर गया, जो चला गया, पास हो गया, जो इसलिए इसको पास टेंस कहते हैं, जो गुजर गया। वामदू ये प्लूरल का सीगा है, और तुम लोग गुजर जाओ चले जाओ। हैसो वहां, अच्छा वहां ये जगह को डिनोट कर रहा है, और जो है तो ये जर्फ है, एडजेक्टिव है, तो है सो जैसे या जहां दोनों मतलब हो सकते हैं। जैसे जो 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 टाइमड वर्ब होते हैं वो स्पेसड वर्ब भी होते हैं, इसी तरह बिल्कुल जो है यह ये भी इसी तरह है इसकी। है सो जैसे हुक्म दिया जा, तो मरूर तुमको हुक्म दिया जा रहा है, जहां तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, या इसका मतलब ये भी होता है जैसे तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, यानी जहां जाने का तुम्हें हुक्म दे दिया जा रहा है, या ये भी कहा जा सकता है जैसे तुम्हें हुक्म दे दिया जा रहा है और बता दिया गया है कि यहां से निकल के तुम कहाँ पे जाओ। तो असल में ये अगर आप जो है डेड सी के, अगर आप रिजोर्ट अपने मतलब जो वहां पे बिल्कुल डेड सी का किनारा है, वहां पे से निकल के जो मारूफ है जगह, वहां पे ऊपर की तरफ एक पहाड़ है, जाहिर है डेड सी के तकरीबन 2-3 अतराफ में पहाड़ है जहाँ से ये पानी आते हैं, तो वहां पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप जो है निकल जाए और इन पहाड़ों की तरफ ले जाए जाएं, और रिवायत यही है, वहां पे ये जगह भी आइडेंटिफाइड की गई है जहाँ पे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और ईमान वालों ने जो है वो ली पनाह ली, वहां पे उनको काफी दूर जो है जगह बता दिया गया। तो उससे मुराद वो है कि तुम उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग वहां पे चले जाओ जो है जहाँ पे तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। कोई साथ इसका तर्जमा पढ़ते हैं।
अस्तफ़रेला
फिर जब ये फरिश्तादे लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम वही चीज़ लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद इनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है।
खैर, अब जो है ये उसी की तफसील है जिसे आपके बिल्कुल, चूंकि ये किस्सा है, किस्से के अंदर जो है किस्से का वो मकाम है जब फरिश्ते हजरत सलाम के घर पे आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से होकर आए, और उन्होंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था कि हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे जा रहे हैं। तो जो है जब हजरत सलाम के पास आए तो आपने लोगों को बस्ती में, चूंकि ये नए थे लोग, आपने कभी उनको देखा नहीं था, तो आपने यही कहा था कि आप लोग जो है अजनबी मालूम होते हो। तो फिर फरिश्तों ने कहा कि तुम जो है परेशान ना हो, हम वो चीज लेके आए हैं जिसमें तुम्हारी कौम हमेशा जो है वो इनकार करती रही है, जिसका यानी जो है अजाब का, तो हम अजाब जो है वो लेकर आए हैं। तो जो किसी को इसके बारे में अंदर शुबा नहीं होना चाहिए, यानी ये बिल्कुल हक और सच है अल्लाह ताला की तरफ से, और हम बिल्कुल यही हक जो है लेकर आए हैं। और इन हिदायात पर अमल करें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है, उसी में जो है उस पर अमल करें। अलबत्ता ये एक जो है फर्क महसूस जो है उसको मलहूज रखें कि जो ये तफसीली वाक्या सूरह हूद के अंदर आपको याद होगा कि हम पढ़ आए हैं, वहां पे एक रुकू से भी कुछ ज्यादा जो है वो हिस्सा इस तफसील में है। तो वहां पे फरिश्तों ने अपना तारुफ जो है, यहाँ पे है कि फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन ये कोई क्रोनोलॉजी कल ऑर्डर नहीं है, ये कोई जो है वाकयाती ऑर्डर नहीं है, बल्कि जो है मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बात को बयान किया गया है यहाँ पे। अलबत्ता वहां पे जो है फरिश्तों ने तारुफ अपना पहुंचने पे नहीं करवाया था, बल्कि जब उन्होंने फरिश्तों ने जो है वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को जगह छोड़ने से पहले, जब वही उनके घर पे लोग जमा हो गए और हमला करने के लिए, और जो ना वो ये कहते थे कि हमें जो है इन लड़कों को हमारे हवाले करो, तो बाद में फिर जब उन्हें बताया, फिर उस वक्त उन्होंने तारुफ करवाया था कि जो है वो हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं भेजे हुए और तुम जो है घर वालों को लेके चलो। अलबत्ता यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो पहले जो है फरिश्तों का बता दिया गया कि फरिश्ते जो है वो उन्होंने बताया कि हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात का कुछ हिस्सा अपने घर वालों के साथ रहो और आधी रात के बाद जो है घर वालों को लेकर चलो, और तुम पीछे पीछे जो उनके चलो उनको आगे चलाओ, और जो है वो तुम मतलब ये तमाशा देखने के लिए या जो है पीछे मुड़कर मत देखो, या फिर तुम्हारा किसी किस्म का कोई जो कनेक्शन जो तुम्हारा जो है उन लोगों से नहीं है, तुम जो है यहाँ से, ये अल्लाह ताला का अजाब इस कौम पे और जगह पे आया चाहता है, तो तुम इससे जितनी जल्द दूर हो सको जो है वो निकल जाओ यहाँ से, तुम आगे चले जाओ। तो जो है वो ये बात जो है वो बताई गई है यहाँ पे जो है इस न्यायात के अंदर। और फिर आगे इसी बात को जारी रखा गया है, वो कदाई ना, अल्लाह ताला ने फरमाया वो कदा, कदा जो है वो हम फैसले को कहते हैं, और हमने फैसला किया, अल्लाह ताला ने फरमाया ना हमने, ये अल्लाह ताला की तरफ ये जमीर है, जमीर जो है वो जब ये मुतकल्लम जमा है, लेकिन ये अल्लाह ताला की जो जिसको रॉयल जो है वो जमीर या प्रोनाउन कहते हैं, ये वही वाला है, इलैहि उसकी तरफ हमने फैसला किया उसकी तरफ, या फैसला बता दिया हमने उसको यानी नूह अलैहिस्सलाम को, जालिकल अम्र इस अम्र का इस बात का यानी इस बात का फैसला हमने उसको जो है वो बता दिया कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है। अन्ना के दाबेरा, दाबेर देखिए ये लफ्ज पहले हम दबरा पढ़ दोबरा पढ़ाए हैं, दोबरा का मतलब होता है पीछा आखिर, और दाबिर जो है पीछे रहने वाला, पीछे रहने वाला सबसे पीछे रहने वाला जो होता है, तो अगर किसी दाबेरा हाउला है, यानी इस बात इसको जो इसलिए जान लें कि तर्जमों में ये चीज आपको नहीं मिलेगी, तर्जमों में लिखा होगा कि इस बात का हमने फैसला किया उसकी तरफ वही की उसको बता दिया कि जड़ काट दी गई, ठीक है उस कौम की, दाबरा हाउला इनकी जड़ काट दी गई, लेकिन ये जड़ के मानों में नहीं है, दाबिर का मतलब है पीछे आखिरी शख्स, किसी कौम के शख्स आखिरी शख्स को भी अगर उसको भी मार दिया जाए तो उसका मतलब है कि पूरी कौम को हला कर दिया गया, तो यूं इससे मतलब है कि कोई भी अगर ना बचे फिर जाहिर है कि उस ऐसे है जैसे उसकी किसी कौम की बेख मार दी गई है, किसी कौम की जड़ काट दी गई है, तो यूं तर्जमों में लिखा होता है जड़ काट दी गई है, लेकिन जड़ का कोई मानी यहाँ पे कोई लफ्ज जड़ के लिए नहीं है, दाबिर का मतलब होता है आखिरी शख्स, इन अन्ना के दाबिर हाउलाए, इन लो हाउलाए जो है वो जमा का सीगा है, दबरा तो दबरा जिसमें मैंने कहा पुश्त फेरने की, ये पूरा वर्ब है, उससे दाबिर जो है जाड़ बे बिना पिछाड़ी पीछा, दाबिर आखिरी शख्स के मानों के अंदर जो है ये है, और हाउला जो है ये प्लूरल का सीगा है, और ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये इसम इशारा है, कुरान बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर, ये दो अल्फाज मुश्तमिल, हा हरफ तंबी है यानी जान लो इसके लिए तंबी, यानी खबरदार रहो इस तरह मुतवज्जे हो, उला इसम इशारा है, जमा करीब के लिए इसम इशारा है, जो जो प्लूरल का इशारा है और करीब के लिए है। कि इन लोगों की जड़ मकतून कता कर दी जाएगी, मकतू जो है वो चीज जो कता कर दी गई, मकतू कता कर दी जाएगी, मुसबहीन। अब ये सारे लफ्ज देखें, ये सुबह से ही मुसबहीन काटी जाने वाली है, सुबह करने वाले होते हुए मुसबह सुबह करने वाला जो है वो मुसबह। अच्छा ये भी सुबह से है, जो है असबहा से है, सुबह करना, असबहा यसबह हो सुबह करना, मुसबह सुबह करने वाला, मुसबहीन सुबह करने वाले, यानी ये मुसबहीन होते हुए इनकी जड़ काट दी, यानी जो है सुबह होते ही इनकी जड़ जो है काट डाली जाएगी। ये अल्फाज भी थोड़े से जो है बाज़ों का जो है उर्दू और अरबी अल्फाज का जो है फर्क यूँ होता है कि अरबी में उनके मफहूम जो है वो अरबों के अंदर मारूफ होते हैं, उर्दू में हमें थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। वजा आ और आए, अब देखें ये तो आए, लेकिन अब वो पीछे फिर जो है पीछे जा चला जो है कुरान में ले गया है, और पीछे जब उनके घर पे ये चीज जो हो रही थी तो फिर हमें वो, इसीलिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ये वजा आ और आए अहलुल मदीना, मदीना वाले शहर वाले आए, यानी कहाँ पे आए, लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, क्योंकि उनके घर पे ही जो है फोकस जो था सारा उनका घर ही था। जस तबशिरून, बड़े खुश होते हुए, खुशियां मनाते हुए, इस तबशरा जो है मैंने खुश होना, काला तो उन्होंने कहा, काला एक शख्स ने कहा और ये लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन बेशक हा उलाए, वही लफ्ज आ गए हा उलाए, ये लोग यानी ये जो मेहमान आए हुए, दईफी ये जो है दईफ मेरे मेहमान हैं, ये मेरे मेहमान हैं, फला तफदहून लिहाजा मुझे बेअब्रू ना करो। अच्छा ये जो लफ्ज तफदहा है ये फदहा से है, फदहा। अच्छा फदहा जो है बेअब्रू करना, बेइज्जत करना, तो इससे उर्दू में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम इसको सूरह तौबा के जो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ाए थे कि सूरह तौबा का एक नाम अल्फादहा भी है, उसके नामों में से सूरह तौबा के बहुत ज्यादा जो है सिफाती नाम है बहुत सारे हैं, कुछ 10-15 हैं, तो उनमें से एक नाम जो उसका है अल्फादहा, और ये जितने सूरह तौबा के जो सिफाती नाम है जो साथी हम जहाज़े जिनको हम पढ़ाए, तो वो सारे के सारे नाम जो है जो सूरत का मजमून है उसके हवाले से है कि किस तरीके से ये सूरत मुनाफिकीन और मुशरिकीन के बारे में, तो अक्सर नाम जो है मुशरिकीन और मुनाफिकीन पर बहुत ज्यादा ये सूरत सख्त होने के हवाले से है सारे नाम, तो ये फादह भी उसी वाले, ये बेइज्जत करने वाली है ये सूरत जो है, फादहा का मतलब है बेइज्जत, जलील करना, जलील करने वाली है मुशरिकीन को और मुनाफिकीन को, तो उसका एक नाम जो है सूरह फादहा भी है, तो मुझे यहाँ पे है तफदहून फदा मुझे बेअब्रू ना करो, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे मेहमान है, मेरे मेहमानों को नुकसान पहुंचा के गजब पहुंचा के तो मुझे बेअब्रू ना करो, वत्तकुल्ला और अल्लाह से डरो, वला फरमाया वला तुहजून, वला तुह, अच्छा ये है असल में ये वला तुहजूनी और तुम मुझे रुसवा ना करो, ये वाला तो हुजूनी तुम मुझे रुसवा, अखजा युखजी इखजान रुसवा करना, और ये भी इसी तरीके से जो है ये भी उसी सूरत के नाम से जो है मुखजिया, सूरत तौबा का एक नाम जो है हम पढ़ाए थे मुखजिया रुसवा करने वाली, और ये भी मुनाफिकीन और मुशरिकीन को रुसवा करने वाली है, तो जो है वो उसके नामों में से एक खुजूत है, और ये अखजा जुफजी एग्जाम जो बहुत आम इस्तेमाल होता है कुरान मजीद के अंदर, ये जो वर्ब है रुसवा करो मुझे रुसवा ना करो, कालू तो उन्होंने कहा अवलम क्या लम नहीं नन हका। अच्छा देखें ये तीन लफ्ज है नन हका, पहले नून जबर ना हम के मानों में, आगे है लफ्ज नहा नहा जनहा आपको पता है मना करना, और फिर तीसरा लफ्ज है का आपको, क्या हमने मना नहीं किया था, नहीं लम की वजह से लम नन हका, क्या हमने मना नहीं किया था तुमको, यानी हमने तुझे मना नहीं किया था इससे पहले, अनिल आलमीन के पूरे तमाम लोगों के जहान वालों के तुम जो है वकील ना बनो उनके हिमायत में, जहान वालों की हिमायत से, यानी अनिल आलमीन आलमीन से, यानी आलम जहान वालों से, मतलब है जहान वालों की हिमायत से, तुम्हें हमने, तुम तो ठेकेदार हो कोई, यानी ये बात वो कहना चाहते थे। कौला, तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हा उलाई, ये हैं बनाती, मेरी बेटियां, मेरी यानी मेरी बेटियां मतलब मेरी कौम की बेटियां। तो चूंकि जो नबी होता है, रसूल होता है, वो कौम के बाप की जगह पे होता है, तो इसलिए तमाम जो बेटियां हैं, जो है पूरी उम्मत की, पूरी जिस कौम की तरफ वो भेजा गया, वो उसकी अपनी बेटियां वो होती है, वो अपने बाप की जगह पे होता है। तो यूं उससे मुराद है मेरी कौम की बेटियां हैं ये। इन कुंतुम फायल, इन कुंतुम अगर तुम हो, फायलिन कुछ करने वाले, अगर तुम हो कुछ करने वाले, तो ये मेरी बेटियां हैं, इनसे ये नहीं निकाह कर लो। पूरी बात ये ना ये है निकाह कर लो। अगे अल्लाह ताला फरमा लउम रुका, लाम जबर ला जो है कसम के लिए है, ये लाम कसम है, कसम है तुम्हारी उम्र की, उम्रों का कसम है आपकी उम्र की। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया जा रहा है, तो जाहिर है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए इसमें ये बात पोशीदा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र की कसम है, इन्हीं अल्लाह ताला ये जो है वो कसम उठा रहे हैं। और ये और जो जो मुसरी ने लिखा है कि ये एक यानी ये मारूफ होता था कि ये इस तरीके से अरब जो है ये बात में किसी कलाम के अंदर जोर पैदा करने के लिए और बात को बहुत ज्यादा वाजे और नुमाया करने के लिए बीच में कहीं पे इस तरह की कसम जो है खा लेते थे, तो वहीं पे ये एक बड़ा खूबसूरत उसलूब है जो है, इन्नहुम कि बेशक वो यानी ये जो कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की, लफी यकीनी तौर पर थे, सकरतहिम जो है सकर जो है मदहोशी, हिम उनकी, ये अपनी मदहोशी में थे, यकीनन ये लोग अपनी मदहोशी या मस्ती के अंदर थे। सकरा जो है मदहोशी को कहते हैं, जिससे लफ्ज मशहूर है सकरतुल मौत, मौत की मदहोशी जो होगी जो है, और सकर नशे की हालत को कहते हैं उर्दू के अंदर, उर्दू में सुकर और फिर मुसक्करात, आपको पता है वो दवाइयाँ जो है जो पेन किलर्स होती हैं, जो उनको जो है उर्दू के अंदर मुसक्करात कहते हैं, जो जो दुनिया इंसान को पेन को किस तरीके से वो जाहिर वो करती है, खत्म करती है कि इंसान को जो है वो मदहोश या नशे की हालत में जो है इंसान को जो है वो ले जाती है, तो वो सारी दवाई मुसक्करात कहलाती है। या महून, बेशक वो लोग अपनी मस्ती में थे, या महून जो है अंधे, अंधे हो रहे थे, अंधे जो है या महून अंधे, अमेहा या महू अमहन जो है सरगर्दां, बिल्कुल जो है पागलों की तरह जो है वो फिरना, सरगर्दां फिरना, तो इसमें खास तौर पर दिल के अंधेपन का मफहूम है जो बिल्कुल सोच समझने से जो आ रही है। तो साथ ही इसका तर्जुमा पढ़ देना है आपको।
और उसे हमने अपना यह फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले कि हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया के ठेकेदार ना बनो। लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज़ होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे।
जज़ाकअल्लाह खैर। अब आप देख रहे हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की जो है उबाश, कौम के जो उबाश थे वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे जमा हो गए, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही फैसले से आगाह कर दिया कि इस बस्ती की जड़ सुबह होती काट दी जाएगी और इसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, और यहाँ कोई मुतनफ़िस ना बचेगा, एक शख्स भी ना बचेगा, दाबिरुल कौम, कौम का आखिरी फर्द जो है उसको भी जो है मार दिया जाएगा। तो जो है आप वो लोग जो है लोगों को उन्हें पता चला कि खूबसूरत लड़कों की जो है वो आए हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे मेहमानों की सूरत में, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी दौड़ते हुए आए और आपके घर पे जो है जलगार कर दी। और ये पूरा किस्सा हम सूरह हूद के अंदर तफसीर के साथ पढ़ाए हैं, बस दोबारा इस किस्से को यहाँ पे बयान किया जाए तो इसको हम बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं उस पैगाम को, पिछले को। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुतालबा किया कि इन लड़कों को हमारे हवाले करें, ताकि वो बदकारी कर सके। तो इससे अंदाजा होता है कि इस कौम की बदअखलाकी किस हालत को पहुंच चुकी थी कि बस्ती में किसी खूबसूरत शख्स का आ जाना इस बात के लिए काफी था कि उस कौम के ओबाश और गुंडे जो है वो जमा हो जाए और खुलम खुला जो है उन मेहमानों की हवालगी का मुतालबा करें कि जो है वो बदकारी कर सके। तो उनकी गोया पूरी की पूरी आबादी के अंदर कोई साले उनसे न बचा था जो उनके खिलाफ या इस बदअखलाकी के ऊपर आवाज उठाता। और उस कौम के अंदर यानी आप कह रहे हैं कि अखलाकी जो जो हिस थी उसकी जो आखिरी कोई रमक भी थी वो भी जो है वो खत्म हो चुकी थी। तो कोई इस हद तक जो है ये लोग अपनी इस सरकशी के अंदर जो है पहुंच चुके थे। तो ये जो शहर था बस्ती सुदूम शहर जो था तो फरिश्तों में का जो जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आना और फहाशी में डूबी उस कौम का जो है ये एक आखिरी टेस्ट था जो जिसके अंदर ये बुरी तरह नाकाम हुए। और फिर इस नाकामी पर उन्होंने जो इबरतनाक अंजाम होने वाला था उसके ऊपर जो है मोहर तस्दीक सब्त कर दी उन्होंने उसके ऊपर। तो आपने नेहायत मोसर अंदाज में उनको अपनी इज्जत और आबरू का वास्ता दिया और जो है वो खौफ खुदा का हवाला भी दिया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं और इनकी हिफाजत कर मुझे ऊपर अखलाकन फर्ज है, तुम जो है वो इससे बाज रहो वरना मैं जो है ज़लील ख़ुआर होके जो उनके सामने रह जाऊंगा। इन उस वक्त तक हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मालूम न था उस वक्त तक यानी अगर हम पिछले हजरत सूरह हूद के वाक्य की रोशनी में देखें तो वो तो यही समझ रहे थे कि ये मेहमान है और मेहमान आ गए और जो है वो कौम पूरी की पूरी दौड़ती चली आ गई। तो वो तो मेहमानों को जस्ट मेहमान और अजनबी मेहमान समझ के उनको जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बाद में उन्होंने बताया कि हम जो है फरिश्ते हैं। लेकिन उन्होंने वो बड़े ही कसमुपरसी का जो ऐलान कि वो इजहार किया था कि काश मेरे पास अगर आपको याद होगा सूरह हूद में फरमाते काश मेरे पास कोई ऐसी कुव्वत होती या मैं किसी कुव्वत का सहारा पकड़ता कि मैं जो है इस बेबसी की सूरत हाल से जो है वो निकल सकता और अपने मेहमानों की जो हिफाजत कर सकता। तो ये वो जो है वो अपने पूरी तरीके से जो है इन लोगों को समझाने की जो है वो कोशिश कर रहे थे और उनकी जो समझाने की हर कोशिश थी वो बिल्कुल उनकी बदअखलाकी और बदअखलाकी इंतहा को पहुंची बदअखलाकी के सामने उनकी हर कोशिश जो है नाकाम हो रही थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखिए कि ये एक अंबिया अलैहिस्सलाम का ये एक जो है वो उसवा है हर किस्म के खतरे और तजावुज से मेहमानों की हिफाजत करना जो आपके पास आए हैं और उनकी हुरमत का ख्याल रखना एक जरूरी और एक लाजमी जो है अम्र है ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका है और उनकी सुन्नत है। तो इसके जवाब में फिर वो मजीद दीद दलेर हो गए और उन्होंने डांट डपट पलाना शुरू कर दी लूत अलैहिस्सलाम को कि हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि पूरी दुनिया के ठेकेदार मत बनो और हम अपने मामले में जो वो करना चाहें जो है वो हम आजाद हैं और तुम्हारे से कुछ लेने देने नहीं है। तो हजरत दूसरी सलाम ने इस कौम की अखलाकी हिस्बेदार करने की एक आखिरी तदबीर फरमाई कि शायद इनके अंदर फितरत सलीमा की कोई रमक बाकी रह गई हो। तो उन्होंने फरमाया कि ये मेरी कौम की बेटियां हैं तुम इनसे निकाह कर लो यानी ये फितरी अल्लाह ताला ने रास्ता तरीका रखा है निकाह का पूरी दुनिया में इससे पहले भी और इसके बाद में भी और हमेशा और तुम जो है इस गैर फितरी तरीके को छोड़ो और मेरे जो है मेरे मेहमानों के सामने जो है वो सवा मत करो। लेकिन ये याद रहे कि ये कोई हजरत सलाम की तरफ से कोई पेशकश नहीं थी कोई कंप्रोमाइज नहीं था कि तुम ये कर लो और ये ऐसा ना करो ऐसा कर लो बल्कि उनके जमीर को जो झोड़ने के लिए आपने आखिरी तदबीर की थी कि लेकिन ये इत्माम हुज्जत भी उन पे पूरा हुआ और इस बदमस्त कौम के ऊपर कोई इसका भी जो असर ना हुआ उनकी इस जो है नसीहत का भी। तो फिर वही कुछ हुआ जो अल्लाह ताला ने उनके लिए लिखा था अखजत पकड़ लिया हम उनको असह्या एक सख्त जो है धमाके या एक चिंगार ने और धमाका कह लें बहुत बड़ी और बहुत बुरी आवाज और बहुत ही खौफनाक आवाज जो है ये चीख चिंगार धमाका खौफनाक आवाज जो है ये सब इसके बानों के अंदर ये चीज जो है शामिल है। मुशरिकीना अब देखो ये सारे लफ्ज जो है हम पहले भी पढ़ा है मुशरिकीना। अच्छा ये एक लफ्ज होता है मुशरिकीना जो है काफ के साथ है ये मुशरकीना है कौफ के साथ है ये दोनों में फर्क कीजिए। مشرقین شرق سے ہے، شرق اشرق جیسے ہوتا ہے جو ہے اشراق ہونا، اشرق یشرق اشراقن، اشراق اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اجالا ہونا، سورج نکلنا. نماز اشراق جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جب تھوڑا سا سورج اوپر نکل آئے، تو اسی کو جو ہے سورج نکلنے کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے نماز صلاۃ الاشراق کہلاتی ہے. تو اجالا ہونا، تو اشراق ہوتے مشرقین، یعنی ان کی حالت بتائی گئی ہے کہ حال ہوتے ہوئے، یہ حال ہوتے اشراق ہوتے ہوئے ان کی جو ہے ان کو دھماکے میں آ دیا. فجعلنا فا پس، جالا بنانا بنا دیا، جالا بنا دیا پاسٹ ٹینس ہے، نہ ہم نے تو پس یا پھر ہم نے بنا دیا کر دیا، آلیہا سافلہا. یہ قرآن مجید میں دو تین مرتبہ یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے اور اسی قوم کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی ان کے انجام کے لیے. آلیہا سافلہا، آلی دیکھیں یہ علوون سے ہے، اس بستی کو کے اوپر کا اس کا نیچا، آلیہا آلیہ آلی کا مطلب ہے اوپر، آلیہا اس بستی کا اوپر، سافلہا اس کا نیچا، یعنی بنا دیا ہم نے اس کا اوپر اس کا نیچا. آپ انداز کر سکتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے بستی کو پلٹ دیا، الٹ پلٹ دیا، یعنی بستی کو وہ کر دیا. آلی علوون سے اسم فاعل ہے، آلی مرتبہ وہ شخص جو بلند مرتبہ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. آلی کا مطلب ہے جو اوپر والا، بالائی. اور سافلہ جو ہے سفل، سفلن سے سفولن سے، سفلہ جسول سفولن سے اسم فاعل ہے نیچے یا زیری والا، ساتلین اسی سے ہے آپ کو پتا ہے سب سے نیچے جو اسمان. تو جو ہے یعنی اس بستی کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نیچے والا بنا دیا، یعنی بستی کو دھسا دیا، بستی کو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے ایک تہ جو جما دی، تو اس کا جو اوپر والا تھا وہ نیچے چلا گیا اور اس کے نیچے جو تھا وہ اوپر آ گیا، یہ اس طرح جو ہے وہ کر دیا. وامطرنا اور برسائی ہم نے، وامطر علیہم اور برسائے ہم نے ان کے اوپر. امترا جو ہے ویسے تو مطر بارش کو کہتے ہیں، بارش ایکچولی اس لیے کہ وہ برستی ہے. امترا کا مطلب ہوتا ہے برسانا، تو کوئی بھی چیز جو ہے اوپر جو برسائی جائے، چاہے اوپر سے بارش پانی کی بارش برسائی جائے یا پتھروں کی بارش برسائی جائے، اس کے لیے امترا ہی استعمال ہوگا. تو ہم نے برسایا اوپر سے کیا علیہم ان پر، جو برسایا ہم نے ہجارتن پتھروں کی بارش، ہجارہ پتھروں کی بارش برسائی، من سجیل جو بڑی جو ہے وہ سخت مٹی کے جو ہے پتھر تھے، جو سخت مٹی کے پتھر. اور یہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے جو علماء لغہ ہیں کہ جو سجیل ہے یہ سنگ گل سے جو ہے لکھا ہوا لفظ ہے. سنگ کا مطلب فارسی میں، فارسی کا لفظ ہے، سنگ کا مطلب پتھر، گل کا مطلب مٹی، وہ جو مٹی جم کے جو ہے وہ سخت ہو جائے اور پتھر بن جائے تو وہ پھر سنگ گل ہے. تو یہ لفظ جو ہے معرب ہے، یعنی یہ جو ہے اسے فارسی سے آ کے عربی کے اندر جو ہے لفظ اڈاپٹ ہو گیا، استعمال ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ یہ لفظ اس وقت میں استعمال ہوتا تھا اور فارس آپ کو پتا ہے عربوں کے پڑوس میں تھے، بہت سارے الفاظ فارسی کے بھی عربی کے اندر استعمال ہوتے تھے، تو یہ بھی ان میں سے ایک لفظ ہے. ان نفیز آلے کا، اور یہ وہاں بھی آیا ہے آپ کو پتا ہے سورہ فیل کے اندر بھی لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت پتھروں کی مٹی کے جو پتھر تھے وہ برسائے ابراہ کی فوج کے اوپر. ان نفی ذالے کا، بے شک اس میں ہے، لا آیات، لام زبر لا حرف جو ہے تاکید ہے، آیات نشانی، یقینی طور پر اس میں وہ نشانیاں ہیں. للمتوسمین، للمتوسمین جو ہے یہ ہے اہل فراست. اب دیکھیں یہ لفظ ہے واو سین میم وسم، آپ کو پتا ہے وسم، آپ مجھے شور نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ باب تفاول ہے. توسم یہ توسم توسمن، علامت دے کر شناخت کر لینا کسی چیز کو. اچھا وسمہ ہوتا ہے نشان لگانا، یہ جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے نشان زدہ کر دینا، جیسے گھوڑوں کے لیے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھوڑے جو ہیں، یہ آیا کسی کو یاد نہیں آ رہی سورہ توبہ کی، جس میں فرمایا کہ یہ گھوڑے ان کو نشان زدہ گھوڑے ہیں جو 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 تمہیں محبوب ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کئی جگہ پہ یہ آیا ہے तो वो शख्स जो निशानियों और लामतों पे गौर करे और चीजों को पहचान ले, कि वो शख्स जो है बड़ा जहीन फतीन और अहले फरासत में से है। तो मुतवस्मीन उसी से फिर है, अहले फरासत। उर्दू में लफ्ज होते इस्तेमाल होते हैं वसीम, वस्मा। आपको पता है वस्मा क्या होता है? ये खिताब लगाना जो है, वस्मा इसमें हम होता है। तो वस्मा का मतलब वही निशान जो है लगाना। मौसम जो है, ये असल में लफ्ज, असल में ये लफ्ज था मौसम हज, यानी वो दिन जब जो हज के लिए जो है मौसूम है, जो हज के लिए, वो दिन जो हज के लिए या जम इजमाए हज के लिए मौसूम है, वो मौसम हज कहलाता था। बाद में ये लफ्ज मौसम फिर मुतलकन जो है, जो सीजन होते हैं, टाइम पीरियड, कोई मखसूस टाइम पीरियड जो होते हैं, गर्मियों का, सर्दियों का, बहार और फिजाओं, ये तो उसके ऊपर इस्तेमाल हुए। और मौसूम वो चीज है जिसके ऊपर निशान ज्यादा जिसको कर दिया जाए तो वो मौसूम कहलाता है। तो वन्नहा, और बेशक ये लसबीलुन, लसबीलिन, लमजबल्ला जो है, ये है अरफे जो है वो ताकीद, सबील बड़ा रास्ता, मुकीम जो आबाद, ये इशारा आम जो है, ये बेशक ये वाली जो ये बस्ती है, ये बस्ती जिनका जिक्र किया गया है, ये बस्तियां हैं, एक लसबील मुकीम एक इशारा आम के साथ है, सबील बड़ा रास्ता खुली इशारा के ऊपर। इन नफी जाले का लाया, फिर वही आ गया कि इनके अंदर बड़ी निशानियां हैं, लिल मोमिनी ईमान वालों के लिए। व इनकाना, और यकीन, व इन जो है, ये जो इन है ये इन्ना का मुखफफ है, इन्ना का, इन्ना ये लफ्ज है, व इन्ना असल में तो कुरान में ये मुखफफ भी इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। व इन, और यकीनन, काना थे असाबुल ऐका, यानी ये ऐका वाले, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, यानी ये जो असाबे मदियन थे, शोबे कौम थे, ऐका वाले थे, यकीनन थे, लजालमीन जुल्म करने वाले, जो सख्त जालिम थे, लाम जो है ताकीद के लिए है, यकीनी तौर पर जालिम थे, बड़े जालिम थे। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, फंतकमना मिनहुम, फापस इंतकामा, जो इंतकाम लेना, इंतकाम, तो फिर इंतकाम लिया ना हमने, मिनहुम उनसे, उनसे भी मैं इंतकाम लिया। व इन्ना हुमा, देखो, व इन्ना और बेशक हुमा, ये दोनों हुम से हुमा, ये दोनों बस्तियां, इन जिनका जिक्र आया है, असाबे लैका और असाबे कौमे लूत जो है, दोनों बस्तियां, लाबे इमाम मुबीन, लमजबल्ला यकीनी तौर पर, बाजबे साफ इमाम सामने, और मुबीन खुला रास्ता, खुले रास्ते के साथ हैं, बड़े खुले शहरा के साथ हैं। ये शहरा ही है, अभी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं नक्शे के अंदर भी। इमाम का मतलब पेशवा, रहनुमा। इमाम उसको कहते हैं जिसका कसद किया जाए, इमाम तो रास्ते का भी चूंकि कसद किया जाता है, इसीलिए ये रास्ते के माने, ये इमाम जो है रास्ते के मानों में भी आता है। इमाम का वैसे मतलब तो होता है जो आगे है, और आगे यानी इमाम इसको कहते हैं जो नमाज का इमाम होता है, उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें हम उसकी इत्तेबा का जो है वो उसके पीछे खड़े होने का कसद करते हैं, ठीक है। या फिर कोई अगर इल्म के अंदर और तकवा के अंदर इमाम है, तो हम उसके इल्म में उसका कसद करते हैं, उसके इल्म पे इत्तेबा करते हैं। तो इस मानों के अंदर भी इमाम होता है, और इमाम फिर उसी मानों में रास्ते के अंदर भी होता है, लाम लामे ताकीद है। और ये इन जो आखिरी आयात है, इनके पीछे मौका, पढ़ना चाहता है
आखिरकार वो पढ़ते ही इनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को थल पट करके रख दिया और इन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाके में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फरासत हैं, और वो इलाका जहाँ ये वाक्या पेश आया था गुजरगाह आम पर वाका है, उसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान है और एका वाले जालिम थे। तो देख लो कि हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाके हैं।
जी। अब देख ले, इसको नोट कर ले, फरमाया कि ये वो इलाका जहाँ ये वाक्य पेश आता है, गुजरगाह आम पर वाक्य है, और ये दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक्य है, इनके बारे में, तो इनको जो है हम कौन से खुले रास्ते के ऊपर वाके अभी इसका हम करते हैं। तो ये अब अंजाम बताया गया है, जिनसी तौर पर मुनहरिफ कौम का अंजाम बद बताया गया कि अल्लाह ताला ने किस तरह लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जिसने हर नसीहत से मुंह मोड़ा और अपनी जिनसी इनहराफ, ये जो परवर्जन थी, जो जो बिल्कुल अपने नेचर से परवर्ट होने की सूरत पे इसरार किया उन्होंने, तो अल्लाह ताला ने फिर भी अपना उनके ऊपर फैसला जो है वो अजाब का चश्मा कर दिया। और सुबह होते ही जो है एक वहशतनाक आवाज थी और खौफनाक चीख ने उनको आ लिया, और इस कौम पर अजाब को जो जिक्र कुरान मजीद में कई दूसरे मकाम पर भी आया है उसके अगर तालीफी मुताला हम करें तो मालूम होता है कि इस कौम के ऊपर बजक वक्त कई अजाब आए। इस शदीद धमाके की एक आवाज थी, एक तो ये बताया गया है सहिहा, और ये धमाका जो है गालबन जो है कोई ऐसा धमाका था जैसे कोई जमीन फटी हो, जिस तरीके से कोई आप कह लें कि जलजला शदीद आया हो, और उसके साथ फिर वो जो आप देखेंगे वो बहुत ही सख्त आवाज होती है पैदा होती है, और फिर जो है बहुत तेज शदीद हवा भी हो, रादो बर्क भी शामिल हो, और हवा भी ऐसी थी जिसमें कुरान मजीद ने दूसरे मकाम पे कहा गया है, हासिब कहा गया कि ऐसी हवा थी उन पे भेजी अल्लाह ताला ने जिसके अंदर कंकर और पत्थर जो है उड़ रहे थे, और पत्थरों की बारिश वाली जो हवा है हासिब कहलाती है, तो वो भी थे और राद और बर्क भी शामिल थे। तो अजाब के वक्त जमीन के अंदर कोई जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में जलजला आया, और फिर देखो कि वहां वहां पे जो बड़ी शदीद किस्म की जो वेव्स जो जो पैदा होती हैं, और जिसकी जद के अंदर जो भी बीमारत जो कोई भी चीज आती है तो वो जो है उनको गिरा देती है उन वेव्स के, और फिर एक आतिशफिशानी का अमल शुरू हुआ गया। ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसा उनके अंदर फटी है कोई चीज, और जलजले ने फिर बस्तियों को तलपट कर दिया, और आतिशफिशानी के अमल ने इन पर शदीद पत्थरों की बारिश बरसाई, और आतिशफिशानी उनके अंदर ये नहीं है जो अगर कोई ऐसा आतिशफिशानी का अमल हुआ है तो जाहिर है वो जो हवा चली है उस हवा के नतीजे में शदीद पत्थर उन पर बरसाए गए और वो दफन होके रह गए, और अजाब की ऐसी सूरत जो है बहुत ही अल्लाह ताला के गजब की बहुत ही शदीद, यानी इंसान को झुरझुरी आ जाती है जब ये पढ़ता है कि किस तरीके से उनके ऊपर अल्लाह ताला ने शदीद किस्म के अजाब जो है कई मुतअद्दिद अजाब बजक वक्त नाजिल फरमाए। लेकिन अजाब की ये सूरत महज कोई इत्तेफाक यमूम नहीं था कि बस एक जगह पे ये एक अजाब आया है, बल्कि ये बस्तियां थी और बस्तियों की एक सीरीज थी, और इसके दो बड़े जो शहर थे गुमोरा और सुदूम थे, और सुदूम ये मरकजी बड़े शहर थे, और उनके दरमियान में जो है बहुत काफी सारी बस्तियां जो मौजूद थी, तो इन सबको जो है अपने इलाके को लपेट में लिया, और ये बड़े मौसूम थे पत्थर, यानी ये नामजद थे पत्थर, नॉमिनेटेड थे, और हर एक पत्थर जो है उसको बिल्कुल ये डिफाइंड था कि एग्जैक्टली किस मुजरिम को जाके लगेगा और उसको जो है वो उसको बलियामेट करेगा। तो ये जो है ये कोई जैसे बिलमूम अगर तारीख को मुताला करें तो मुवर्रख कहेंगे कि यहाँ पे शायद कोई जो है वो आया था, जलजला आया था, और जो है या कोई जो है आप कह लेंगे कोई आतिशफिशां फटा था और जो है ये बस्ती तबाह हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्कुल मखसूस तौर पर वाजह तौर पर बताया कि ये क्यों जो बस्ती तबाह हुई, और इस बस्ती को तबाह करने में जो हर एक शख्स किस तरीके से उसको जो है वो टारगेट किया गया और उसको जो है वो सजा दी गई, और पूरी बस्ती को जो है इस जुर्म की बिना पे जो है सजा दी गई, इज वेरी वेरी क्लियर। इसीलिए जो है हम जब कुरान मजीद जो तारीख के जो वाकयात हैं कुरान मजीद को नहीं परख सकते तारीखी वाकयात से, बल्कि अदर वे अराउंड होना चाहिए कि तारीखी वाकयात जो है कुरान मजीद के हवाले से परखे जाए कि देखें तारीख आपको ये बताती है कि ये बस्ती तबाह हुई, कुरान मजीद ये बता रहा है कि ये बस्ती क्यों तबाह हुई, क्या वजह थी बस्ती तबाह हुई, लेकिन कोई दूसरा इल्म जो है आपको दुनिया का जो आर्कियोलॉजी का या जो है तारीख का या जो है एंथ्रोपोलॉजी का आपको ये नहीं बताता कि ये बस्ती एग्जैक्टली क्यों तबाह हुई है। आप बेशक आप देख लीजिए जान लीजिए जो 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 अब हमारे बस्ती है जो हमारे पास आज तक कभी आपने सुना है कि ये पूरे का पूरा हमारा एक शहर जो है वो दफन हुआ है जो हड़प्पा है या फिर मुंजदारो है, ये क्यों तबाह हुई है? कभी आपने नहीं सुना होगा कि ये क्यों तबाह हुई है, कभी कोई तहकीक आपने मेरी नजर से तो नहीं गुजरी कि बताया गया होगा कि ये क्यों तबाह हुई है। لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی گلیوں کا نظام کس طرح تھا، ان کی نکاسی کا نظام کس طرح تھا، ان کا فلاں جو ہے چیزیں کیا ہائیجین کس طرح تھی، فلاں چیز کس طرح تھی، فلاں ٹیکنالوجی کس طرح تھی، تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو ہے یہ ہمیں جو ہے یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کے 4000. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر حاسب سے تعبیر کیا ہے، پتھروں والی بارش. اور کہا جاتا ہے کہ بحر لوط جو ہے جو ڈیڈ سی ہے، اس ہمگیر حادثے کے بعد نمودار ہوا. یعنی اس وقت جب سدوم کی پوری زمین وادی جو ہے، وادیاں جو ہے، ایک سیریز آف جو ہے ٹاؤنز اور ولیجز اور وہ تھے پورے سٹیز تھے، وہ سارے زمین میں دھنس گئے. تو اس جگہ پہ ایک اتنا بڑا گڑھا نمودار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو دھنسا دیا، یا ان کا نیچے کا جو تھا اوپر کا جو تھا وہ نیچے کر دیا، یعنی اوپر زمین کا جو اوپر تھا ان کو نیچے دفن کر دیا. تو وہاں پہ اتنا بڑا گڑھا نمودار ہوا کہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا، کہ اس کے اطراف میں تین اطراف سے اس کے پہاڑ ہیں، تو پہاڑوں سے پانی جمع ہوتا ہے سارا، اور دریا جارڈن کا پانی بھی اسی کے اندر آ کے گرتا ہے. تو پھر یہ جو ہے پانی جو ہے جمع ہو کر بحیرہ بن گیا، جو اب بحر لوط، بحر لوط یا ڈیڈ سی یا بحر میت، یہ سارے نام اس کے ہیں. اور یہ اب روئے زمین کا سب سے زیری مقام ہے، سب سے نیچے کا مقام جو ہے دنیا کے لیے. تو درس عبرت کی دعوت دی گئی ہے کہ اس میں عبرت کا بہت سارا سامان ہے. لیکن اگر مہذب اقوام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو پیرش نیشن ہے، ان کے مساکن کو اگر تفریح کے مقصد سے دیکھیں، پکنک کے مقصد سے دیکھیں، یا ان کھنڈرات میں ان کے کلچر کو تلاش کریں جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، اور ان وجوہات پر غور نہ کریں کہ اللہ نے بستیوں کو کیوں تباہ کیا ہے، تو پھر انسان ایمان کی روشنی سے محروم ہی رہے گا، اور ان بستیوں میں جا کے پھر اس کو انجوائے کرے گا، فوٹو بنائے گا، اور جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو جو کیا ہے. اور وہ جو شاعر نے کہا ہے نا، بالکل یہی والی بات ہے کہ اجڑا سا وہ نگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام، اس کریائے شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. اور ہمارا بالکل ایگزیکٹلی یہی حساب ہے. قریش مکہ کو خطاب کیا گیا کہ اے قریش کے لوگوں، اگر تم اس تاریخ سے، ان اقوام سے، ان مہذب اقوام کی تاریخ اور ان کے کھنڈرات سے جو ہے تم سبق حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، کیونکہ یہ بستیاں شاعر عام پہ ہیں، تمہارے قافلہ تجارت انہی کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہو تمہیں معلوم ہے ان کھنڈرات کے ایک ایک ذرے کے اندر جو ہے نشانی موجود ہے، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو. اور یہ عبرت اور یہ جو بصیرت ہے، جو بصیرت یہ مومن کا ایک لازمی خاصہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں مومن ان واقعات سے جو ہم دیکھیں روزانہ بنیاد پر واقعات ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اور ہر بندہ جو ہے ان کے مختلف اینگل سے جو ہے ان کو ڈسکس کرو. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، سب سے اہم بات ہے کہ ان کو ان نظر سے دیکھا کرو کہ یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی جو منشا اور مرضی اور اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، اس کے خلاف انہوں نے کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ پنش کیا ہے. تو یہ جو فراست ہے یہ بہت اہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ مومن اللہ کی بصیرت سے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت جو ہے اسی سورت کی ہے، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، پڑھی آپ نے، یعنی آپ نے فرمائی پڑھی کہ جو ہے یہ ہے وہ بصیرت جو مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے. تو حجاز اور جو ہے شام سے عراق سے مصر جاتے ہوئے تباہ شدہ کھنڈرات راستے میں پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے مکہ کے لوگ اس میں سے سفر کرتے تھے. بہرے یہ قوم لوط کی یہ بستیاں جو ہے یہ یمن سے جو یہ ایک شرح جاتی تھی شام تک، بحر روم تک، یعنی بحر عرب سے، یعنی جو انڈین اوشن کا حصہ ہے بحر عرب، اور پھر آگے بحر روم جو ہے میڈیٹرین سی کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی تھی. تو یہ ایک شرح تھی اصل میں. تو مشرقی ممالک کا مغربی ممالک سے جو ہے یہ تجارت کا راستہ تھا بذریعہ جو ہے یہ عرب ممالک، یعنی ہندوستان، چین، جاوا، ملاٹر، سمایا، ملایا سے جو ہے وہ جو بھی سامان آتا تھا یورپ کے لیے آتا تھا وہ یمن کے ساحل پہ اتارا جاتا تھا، اور اسی راستے سے تجارتی قافلے پھر شام اور فلسطین کے ساحل پر پہنچتے تھے، اور پھر ادر وے اراؤنڈ بھی بالکل جو ہے یہی تھا. اس وقت ظاہر یہ نیر سوئز جو ابھی نہیں بنی تھی، یہ تو پھر شارٹ کٹ ہو گیا. اور جو دوسرا کیپ آف گڈ ہوپ جو والا جو راستہ، جس کو راس امید والا راستہ کہا جاتا تھا، ये अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसको तो वास्को डी गामा ने 1498 में जो है दरियाफ्त किया। तो ये इस जमाने में मशरक और मगरब के दरमियान तजारती रास्ते की वाहद बड़ी शाहरा थी। तो इससे हमें कुछ असबाक मिलते हैं कि अल्लाह ताला की फैली हुई निशानियां जो हैं, आयात इलाही और तारीखी वाकयात जो हैं, जो उनकी शनाख्त के लिए जो है और उनसे फिर फायदा मांगने और इबरत हासिल करने के लिए ईमान और हक को जो है कबूल करने का ये एक पेश खैमा है। यानी अल्लाह ताला की निशानियां जो फैली हुई है, होशियारी, फरासत, दिक्कत नजर और सच्चे मोमिनीन की सिफात में से है। कुरान में तारीखी वाकयात और कसस को नकल करने का मकसद और फलसफा जो है अल्लाह ताला की मार्फत और तौहीद हासिल करना है, और दर्स नसीहत के लिए और मार्फत इलाही की खातिर सबका लोगों और उम्मतों के जो तमद्दुन है, आसार कदीम है, उनकी हिफाजत एक जरूरी और एक शायस्ता फेल या एक पसंदीदा अमल है। अब ये वो तजारती जो है, आपको अंदाजा होगा कि यमन से शाम तक की बड़ी तजारती शाहराह जो मशरक से मगर जो मगरब को मिलाती है। अब देखें ये जो इलाका है जो है ये यमन है अदन की, जो आपको पता है पुराने जमाने से। तो ये बहर अरब या इंडियन ओशन में जो आप कह लें बहर अरब का जो इलाका है, इसकी एक थी। इधर से जो सामान आता था मशरक से, तो वो जो है पूरी इस शाहराह से अरब से इलाके होता हुआ मक्का और फिर मदीना और फिर जो हिजाज के इलाकों से होता हुआ, फिर जो जॉर्डन का इलाका है जिसे आजकल कहा जाता है, और फिर ये गुजरता था, आप देख लें ये बहर लूत है, ये बहर लूत है, ये वो इलाका था जहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और इससे पहले का इलाका जो था ये जो है पेट्रा और अकबर के इलाके के पास और हिजाज के इलाके के अंदर, यहाँ पे जो है ये कौम जो है दूसरी हजर की कौम जो सबूत की कौम आबाद थी। तो ये दोनों देखें ये मरकजी शाहरा और ये शाम तक फिर जाता था, और मेडिटेरेनियन जो है देखें ये मेडिटेरेनियन के जो है इसको मिलाता था। तो ये फिर मगरब यहाँ से फिर मगरब तक जो है, या इधर अगर चले जाए जहाँ पर इनकी बंदरगाहें थी यहाँ पे, तो ये मगरब को मशरक से मिलाने वाला था। तो ये देखिए बड़ी शाहरा के ऊपर ये दोनों के जो है इलाके मौजूद थे। इस वजह से कुरान मजीद ने इसको ये कहा है कि जो है ये बड़ी शाहरा दोनों कौमें बड़ी शाहराओं के किनारे के ऊपर बिल्कुल उनके लैबामन मुबीन फरमाया कि बिल्कुल उनके जो है वो एज के ऊपर वाकिया थी, और इस तरीके से ये लोग जो है देखते थे, और उससे जो है वो कहा गया। अब जो है ये जैसे मैंने आपको कहा कि जजा सजा की तारीखी दलाइल है, कौम लूत, असहाब अलैका और असहाब अलहजर की लियाकत का जिक्र किया गया है, और उनसे दरस इबरत की जो है वो नसीहत की गई है। ये जो है चौथा रुकू था, और अलबत्ता इजाफी मवाद में आप एक बार नोट कर लें कि चूंकि ये अच्छा मौका है, इसको हम दोबारा जो है वो देख लें, एक तफसीली जो है वो इजाफी मवाद जो है अब जो शामिल किया गया है, और वो है कुरान मजीद में किस्सा कौम लूत। लिहाजा उसके तमाम मुबाइस पे जो उसको उसमें उनको अहाता किया गया है, कौम लूत और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनका इलाका कौन सा था, उनके ज़माना कौन सा था, कौम लूत के हालात क्या थे, कौम लूत का किरदार क्या था, कौम लूत का अंजाम क्या हुआ, कौम लूत पर आने वाले अजाब की नौयत क्या थी, फिर उसके बाद जो है ये जो उस पर इससे जो मुतल्लिका मज़ामीन है, मसलन मर्द और औरत का जो ज़वाजी कुदरती और नेचुरल जो ताल्लुक है, ये इंसानी तमद्दुन की बुनियाद है, इसके ऊपर जो है थोड़े से कुछ मुबाहिस है। इस्लाम और हम जिन्स परस्ती, इस्लाम का हम जिन्स परस्ती मुतल्लिक क्या जो है वो जो है नजरिया है, इस्लाम में हम जिन्स परस्ती एक इंतहाई मजमूम और कबीर फेल क्यों गर्दाना गया है, नई कौम लूत क्या है आजकल की 20वीं सदी और 21वीं सदी की जो हम जिन्स परस्ती की आलमी तहरीक है उसके बारे में उसका तारुफ है, हम जिन्स परस्ती की आलमी तहरीक की पुष्टपनाई कौन कर रहा है और ये क्यों कर दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है दुनिया के अंदर, हम जिन्स परस्ती की आलमी तहरीक का मुसलमान मालिक में नफूज किस तरह हो रहा है, और पाकिस्तान का जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, जो वो क्या है, इसके ऊपर भी ये तमाम निज़ाम ये जो जो मुबाहिस हैं आप देख रहे हैं इनको जो है वो कवर किया गया है। और वो इसलिए है कि मैं समझता था कि ये कौम लूत का के ऊपर खासतौर पर अल्लाह ताला ने जितने शदीद अजाब नाजिल फरमाया और शदीद गजब का इजहार फरमाया है, तो ये इस बात का तकाजा करता है कि हम जो है इसको जो खासतौर पर जाने, और मैं इसलिए भी अजीज भाई समझता हूँ कि मशरक के अंदर और इन ममालिक के अंदर और मुसलमान ममालिक के अंदर रहते हुए हमें इस खतरे का कमा हक हुआ दराक नहीं है جس طریقے سے یہ تحریک دنیا کے ممالک کے اندر تیزی سے پھیل رہی ہے اور دنیا کی جو ہے مغربی قوتوں کی اور خاص طور بڑی بڑی تنظیموں کی اور خود تنظیم ایک بہت بڑی ایک جو ہے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا کی صورت اختیار کر گئی ہے، کس طریقے سے حکومتوں کو یہ جو ہے اب حکومتوں کی امداد اور حکومتوں کی جو ہے ریپوٹیشن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے، اور کس طریقے سے یہ کئی ممالک جو ہے اس کے لیے اس کو قوانین سازی کر رہے ہیں سیم سیکس میرجز کے لیے، تو یہ انسانوں کی تباہی کی ایک تحریک ہے جو دن بدن پھیلتی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مغرب کے اندر تو بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مغرب کے اندر ہے یہ مسلمان ممالک کے اندر بھی اسی طرح اب آ چکی ہے اور پنپ رہی اور پھیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس مضمون اور اس 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 جو عنوان ہے اسے کم آپ کو اس کے بارے میں جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. یہ صرف ایک آپ کیسے یہ بہت ہی کمپریہنسو قسم کی کوئی گائیڈ نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کے جو مبادیات ہیں اس کی جو بیسکس ہیں وہ ان سے آپ جان سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے میں اس کو جاننے میں یہ انشاءاللہ مندر معاون ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم ان فتنوں سے جدید دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہے اسلام کے اوپر ہی جو ہے وہ ایمان اسی ایمان اور اسلام کے اوپر ہی ہم اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.